हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का आगमन श्लोक संख्या 1। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले हमें कृपा की आवश्यकता है, इसलिए हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और गौरंग के श्री चरणों में कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम्। अध्यैव मे विशतो मानसराज हंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ता, आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तद्धाम वृंदावनम रम्याकाशिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता, श्रीमद् भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा, वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा, पीतांभर धरुण बिंब फल धरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जाने, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र
ప్రమరుతః స్తువంతి ఈస్తవి వేదేసాంగపద్ క్రమోపనిషది గాయంతి యం సామగా ధ్యానావస్థిత తత్ గతిన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో యస్యాంతం న విదో సురాసురగణ దేవాయ తస్మే నమః నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దైవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయ ఉదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీయుత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నైష్టికీ పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద ద్వైతకథాధార శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే
గ్రంథరా శ్రీమద్భాగవతం మహాపురాణకి జయ. ప్రథమ స్కంద అధ్యాయ 19 జిస్కా శీర్షక్ హై శుక్దేవ గోస్వామి కా ఆగమన్. శ్లోక సంఖ్య 1, 2, and 3. సూత్ గోస్వామి అత్యంత హి సుందర రీతి సే శుక్దేవ గోస్వామి కే ఆగమన్ కే పహలే కా జో स्थिति है उसके विषय में बता रहे हैं. इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. सूत उवाच महीपतिस्तथ तत्कर्म गृहम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना అహో మయాని చమనార్యవత్కృతం నిరాగసి బ్రహ్మణి గూఢజే తేజసే మహీపతిస్తథ తత్కర్మ గృహం విచింతయన్నాత్మకృతం సుదుర్మనా అహో మయాని చమనార్యవత్కృతం నిరాగసి బ్రహ్మణి గూఢతేజసి మహీపతిస్తథ తత్కర్మ గృహం విచింతయన్నాత్మకృతం సుదుర్మనా అహో మయాని చమనార్యవత్కృతం నిరాగసి బ్రహ్మణి గూఢతేజసి. శబ్దార్థ్ మహీపతిస్త్వథ तत्कर्म गह्यम महीपति सूत गोस्वामी ऋषियों को बता रहे हैं कि महीपति यानी राजा तू, लेकिन अथ तत्कर्म गह्यम, अथ मतलब इस प्रकार, जैसे जब वो घर पे आए और उसने सोचा तत्कर्म गह्यम, उसने इतना घृणित कर्म किया था। जैसे कि आपको याद है पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि महाराजा परीक्षित आखेट के लिए शिकार के लिए गए और वहां पर देव इच्छा से उनको अत्यधिक प्यास लगी, इतनी प्यास कि उनका तालू तक वो गला सूख गया था और उन्हें बहुत भूख लगी, थक गए बहुत ज्यादा। वो बहुत देर तक किसी जलाशय का खोज करते हैं परंतु कहीं पर भी उन्हें जल नहीं दिखा। शमीक मुनि का आश्रम देखा तो सोचा वहां से मैं जल पीऊंगा, तो अंदर गए। ऋषि तो समाधि में थे, बहुत जोर जोर से बड़ी मुश्किल से आवाज निकाल रहे थे, बोल रहे थे ऋषिवर मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। लेकिन क्योंकि ऋषि समाधि में थे तो उनकी बात नहीं सुन सके। महाराज परीक्षित को बहुत खेद हुआ कि मैं ऋषि के आश्रम में आया हूँ और मुझे इतना सभी सत्कार नहीं मिला कि मुझे मेरे साथ अच्छे से दो बोल बोले जाते, एक गिलास पानी का पिलाया जाता। बहुत दुख हुआ, बोला इस ऐसे व्यक्ति के साथ ना ऐसा ही करना चाहिए, मैं इसने मेरा अपमान किया है, मुझे इसका अपमान करना चाहिए। तो मरा हुआ सर्प जमीन पर पड़ा हुआ था, उसको तीर के धनुष के नोक से उठाकर उनके गले में लपेट दिया और फिर वो चले गए। किसी बालक ने ये दृश्य देखा और जाके शमीक ऋषि के पुत्र शिंगी को बताया कि राजा ने आपके पिता के गले में सर्प डाल दिया। अभी शिंगी भी बालक था, उसे पता नहीं था कि ये सर्प जिंदा था या मरा हुआ था, ऐसे नहीं बताया, बस बोला सर्प डाल दिया। तो उसको लगा कि इससे तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, बहुत दुख हुआ उसको और उसने फौरन से महाराज परीक्षित को श्राप देना, कोशी की नदी में से जल उठाया और श्राप दे दिया कि महाराज परीक्षित जिसने ऐसा किया है उसको मैं ये श्राप देता हूँ कि आज से सातवें दिन तक्षक सर्प उसको डस मारेगा और वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो अपने पिता के आश्रम में गया, देखा तो पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ था। उन्होंने समझा शायद मेरे पिताजी भी की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि सर्प मरा हुआ था। तो वो जोर जोर से रोने लगा कि हाय मेरे पिताजी चले गए, ऐसे जोर जोर से दहाड़े मारकर, जैसे किसी के पिता की मृत्यु होती तो कितना जोर जोर से रोते। तो वो ऋषि तो समाधि में थे, उन्होंने समझा ये मर गए, तो इतना जोर से रोने की आवाज जब शमीक ऋषि ने सुनी तो उठे और जाकर बोलने लगे बेटा क्या हुआ, तुम्हारे साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है, तुम्हें किसी ने कोई कष्ट दिया है, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? मृतक सर्प को तो उन्होंने बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिए, ऐसे फेंक दिया। बोला ये तो कुछ भी नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ। तो फिर शिंगी ने पूरी वार्ता बताई कि आपके साथ ऐसा हुआ और मैंने उस राजा को श्राप दे दिया, वो आज से सातवें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब शमीक मुनि को बहुत दुख हुआ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी छोटी सी भूल के लिए आपने इतना बड़ा दंड दे दिया, इतना पवित्र राजा, इतना बलवान राजा जब चला जाएगा तो बहुत ज्यादा अपराध संसार में हो जाएंगे, हर एक व्यक्ति जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा, सब लोग का धन, सब लोग की स्त्रियां, गौ, ब्राह्मण, किसी की रक्षा नहीं होने हो सकेगी, आपने बहुत गलत कार्य किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना छोटा सा अपराध, बल्कि इसको तो मैं अपराध भी नहीं मानता, और आपने इतना बड़ा उनको दंड दे दिया। तो शमीक मुनि बहुत ज्यादा दुखी हुए, भगवान से याचना की कि मेरा पुत्र अबोध है, अनजान है, आप कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते ना वो तो मतलब किसी को दंड देते नहीं है, लेकिन अगर गलती हो गई है तो फिर वो भगवान के पास गया कि मुझे भगवान आप मेरे पुत्र को ना समझ समझ के क्षमा कर दीजिए। लेकिन इतना कहने के बाद शमीक ऋषि ने सोचा कि अब श्राप तो मेरे पुत्र ने दे दिया है, तो मैं किसी तरह से महाराज परीक्षित को यह सूचना पहुंचाऊं कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो ऐसे ही बगैर कुछ किए उनकी मृत्यु हो जाएगी और फिर वो कुछ कर ना पड़े अपने परमार्थ के लिए, अपने मुक्ति के साधन के लिए। तो मैं उनको किसी तरह से ये सूचना पहुंचाता हूँ। सूचना पहुंचाई, अभी तक पहुंची नहीं थी, लेकिन महाराजा परीक्षित अपने घर में गए तो वो क्या सोच रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है अपने इस कार्य की। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र को बोला कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, गलती हमारी है, और महाराजा परीक्षित क्या सोच रहे हैं उसको बता रहे हैं, वो दृष्टांत दे रहे हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, मई पति स्तुत तत्कर्म गृहम। मई पति महाराजा परीक्षित को जब एहसास होने लगा कि मैंने कितना, गृहम का मतलब होता है बहुत ही घृणित कार्य किया है, इतना गलत कार्य, एक ब्राह्मण के गले में मैंने सर्प डाल दिया, मुझे ऐसा करना, मैं इतना नीच कार्य कैसे कर सकता था। तो आगे कहते हैं, विचिन्तयन्नात् मकृतम् सुदुर्मना। बहुत दुर्मना का मतलब होता है बहुत अंदर ही अंदर में, मन में उसको पश्चाताप होने लगा। किस बारे में? विचिन्त, सोचने पर। किसका? आत्मकृतम, अपने द्वारा। उन्होंने खुद से जो गलत कार्य किया था उनसे उनको इतना दुख हो रहा था कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वास्तव में भक्तों, ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनसे अगर अकस्मात कोई भूल हो जाती है तो उन्हें दिल में दुख होना चाहिए, दुखी होना चाहिए अपनी भूल पर, अपनी गलती पर। आजकल तो क्या होता है, लोग गलती करते हैं फिर उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, ये इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, उसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, मतलब अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए वो कृपा के योग्य नहीं होते हैं जो अपनी भूल को, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। उधर शमीक मुनि अपने पुत्र की गलती को स्वीकार कर रहे थे और इधर राजा कह रहे हैं कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। अहो मया नीच मनार्य अनार्य वत कृतम। अहो, हाय हाय, मैं कितना नीच हूँ, मेरे द्वारा कितना नीच कार्य हुआ, अनार्यवत कार्य हुआ है, ऐसा कार्य मुझे शोभा नहीं देता। मैं तो आर्य हूँ और आर्य लोगों को ऐसा कार्य, आर्य का मतलब होता है सभ्य, आर्य लोगों का मतलब है जो शास्त्र को जानते हैं, आर्य लोग का मतलब ये है जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, उनको ये सब नीच कार्य जो है वो शोभा नहीं देते, क्योंकि वो शास्त्र को समझने वाले लोग होते हैं, उन्हें पता होना चाहिए ब्राह्मणों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा। वो आर्य व्यक्तियों को कभी भी कोई ऐसा दुर्व्यवहार सूट नहीं करता है, नहीं करना चाहिए उनको, अपने पद के अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरे जो होते हैं नीच लोग होते हैं, जो गौ हत्या करते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, वो आर्य नहीं हो सकते, वो सनातन धर्म के नहीं हो सकते। सनातन धर्मी जो होते हैं उनको पता होता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किससे किस तरह से। यहाँ पर एक अत्यंत ही सुंदर कथा बताते हैं कि जो आर्य होते हैं वो सहनशील होते हैं, और दूसरा उनके साथ यदि कोई बुरा व्यवहार करे भी ना तो भी वो बदली में उनके साथ उनके ऊपर कोई इस तरह का बुरा व्यवहार नहीं करते। एक संत गुजरे हैं नामदेव नाम के, बहुत ही सुंदर संत हैं, और पहले थे तो वो विट्ठल भगवान की पूजा करते थे। वो कौशिकी नदी से चंद्रभागा नदी से स्नान करके विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक यवन ने उनके ऊपर थूक दिया। तो अब वो तो अपवित्र हो गए, तो वो कैसे जाते मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो वापस से स्नान करने गए। वापस से आ रहे थे तो रास्ते में वही यवन खड़ा था, वापिस उसके ऊपर थूक दिया। तो वापिस से उन्होंने सोचा क्या वापिस से स्नान करके आऊं, वापिस से स्नान करने गए। ऐसे करते 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 14 बार ये बार बार स्नान करके आते, बार बार यवन उसके ऊपर थूक देता, तो यवन आखिर में थक गया थूकते थूकते कि ये, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, क्योंकि वो जानता था कि ये नीच है, उसका यही स्वभाव है, तो मैं उसको उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी मर्जी है, उसको ऐसा करने में आनंद आता है तो आए, लेकिन मैं तो संत हूं, मैं भला उसको क्यों अपना बोल के अपना मुंह गंदा करूं। मैं संत का स्वभाव होता है सरल, मैंने सहनशील, जिसके अंदर सहनशीलता होती है वही भक्त है। महाप्रभु कहते हैं तरूर युव सहसो, जिस तरह वृक्ष है ना, उसको यदि हम पत्थर मारते हैं तो भी वो फल देता है, तो हमें भी यदि कोई कुछ कह दे तो उसके बदले में हमें उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। इसी एक और भी इस तरह की कथा बताते हैं, बिच्छू है, एक संत स्नान कर रहे थे तो बिच्छू डूब रहा था, संत ने सोचा मैं इसको उठाकर किनारे पे रख दूं, उठा के किनारे पे रख रहे थे तो बिच्छू उसको डंग रहे थे, वापस बिच्छू गिर जाता, वापस उसको उठा के किनारे पे रख रहे थे तो बिच्छू वापस उसको डंग, तो किसी ने संत को बोला कि आप इसको क्यों बार बार उठा रहे हो, ये तो आपको और भी कष्ट दे रहा है, आप इसको छोड़ दो, मरने दो। तब संत ने कहा बहुत ही सुंदर उत्तर कि ये बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वो मुझे डंक मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, तो मैं संत होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं, मुझे भी तो अपना स्वभाव, मुझे बचाना, उसकी सुरक्षा करना, उसके ऊपर कृपा करना मेरा स्वभाव है, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। तो वास्तव में राजा को बहुत दुख हो रहा था कि मैंने आर्य कुल का होते हुए अपनी मर्यादा का जरा भी सम्मान नहीं किया और एक ब्राह्मण के साथ इतना बड़ा घृणित कार्य किया, इतना अपराध किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अहो, अहो का मतलब होता है बहुत ही पश्चाताप, आय हाय मैं कितना नीच कार्य कर चुका हूँ, मया नीचम अनार्य वत कृतम, अनार्य की तरह मैंने कार्य किया। निरागसी ब्राह्मणी गुड़, निरागसी, वो ब्राह्मण तो निर्दोष था, एक तो वो निर्दोष था और गुड़ तेज था, उसके अंदर प्रबल तेज था, वो समाधि में था, वो ध्यान कर रहा था और मैंने उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, इतना बड़ा अनाचार किया, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। अनुवाद देखिए, सूर गोस्वामी ने कहा घर लौटाते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उसने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण की प्रगति के प्रति अत्यंत ही जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है, फलस्वरूप वह अत्यंत उदास था। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पवित्र राजा शक्तिमान तथा निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से अत्यंत दुखी हुआ, ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक पापों से उभर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं, भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि यदि हमसे कोई अकस्मात गलत कार्य हो जाए, वैसे तो शुद्ध भक्त जो होते हैं उनसे कोई कार्य होता नहीं है, वो भगवान की योजना से हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें लगे कि ये कार्य मुझसे सही नहीं किया मैंने, तो फौरन से उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए, हृदय से पश्चाताप होना चाहिए, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा भी नहीं मांगनी चाहिए, महाराज परीक्षित तो क्षमा भी नहीं मांग रहे हैं। आगे वे कहते हैं श्लोक नंबर 2 में ध्रुवम ततो मे कृत देव हीलनात् दुरत्ययम् व्यसनम् नाति दीर्घात् तदस्तु कामं
యగనిష్కృతాయ మే యథాన కురియం పునరీవమత్తా ధ్రువం తతో మే కృతదేవహీలనా దురత్యయం వ్యాసనం నా తిదీర్ఘాన్ తదస్తు కామం యగనిష్కృతాయ మే యథాన కురియం పునరీవమత్తా ధ్రువం తతో మే కృతదేవహీలనా దురత్యయం వ్యాసనం నా తిదీర్ఘాత్ తదస్తు కామం యగనిష్కృతాయ మే యథాన కురియం పునరీవమత్తా ధ్రువం తతో మే కృతదేవహేళన ధ్రువం ఇకేతె నిశ్చిత్ ఇస్ కర్మ కి కారణ మేరే జీవన్ మే భయంకర్ విపత్తి ఆయేగి వి కేతే ధ్రువం నిశ్చిత్ రూప్ సే తతో మే మేరా యే జో కార్య హై అతేవ కృత దేవహేళనాన్ మతలబ్ భగవాన్ కి ఆజ్ఞాయో కా ఉల్లంఘన్ కియా హై మేనే భగవాన్ కి ఆజ్ఞా హై కి మేరే భక్తో కా బ్రాహ్మణో కా గౌవో కా సంరక్షణ హోనా చాహియే భగవాన్ శుద్ధ భక్తో సే సాధువో సే బ్రాహ్మణ సే బహుత్ ప్రేమ్ కర్తే హై హమ్ జైసే రాజాఓ కా తో కర్తవ్య హై కి ఉన్ ఉన్కీ రక్షా కరే ఉన్కా సమ్మాన్ కరే ఉన్కో సాధువాద్ కరే ఉన్కో అనా సత్కార్ కరే ఔర్ మేనే ఉన్కా ఇత్నా బడా అపమాన్ కర్ దియా ధ్రువం తతో మే కృత దేవ హేలన ఇత్నా బడా భయంకర్ అపరాధ్ ముజ్సే హువా హై ఇస్లియే దురత్యయం వ్యసనం నాతి దీర్ఘాత్ అబ్ ముజే విపత్తి సే కోయి నీ బచా సక్తా అవశ్య మేరే ఉపర్ దురత్యయం భయంకర్ విపత్తి ఆనే వాలి అత్యం కఠిన్ విపత్తి వ్యసనం కా మతలబ్ హై న అతి దీర్ఘాత్ అబ్ ఉస్మే కోయి సమయ నహీ లగేగా దూర్ నహీ హై దూర్ నహీ హై అబ్ తో శీఘ్ర మేరే ఉపర్ బహుత్ బడీ విపత్తి ఆనే వాలి ఇత్నా బడా మే అపరాధ్ కర్కే ఆయా హూ మే తో క్షమా కే యోగ్య నహీ హూ వే యే నహీ కే రహే హై కే ముజే క్షమా కర్ దేనా చాహియే మే తో రాజా హూ ముజే తో సమ్మాన్ మిల్నా చాహియే అపమాన్ హువా మేరా ముజే భీ ఏసా కర్నా ఏసా నహీ కే రహే వే కేతే తదస్తు కామం మేరీ ఇచ్ఛా హై కామం కా మతలబ్ హోతా హై అబ్ మే ఏసా హీ చాహతా హూ మే చాహతా హూ కే ఏసా హో మేరే ఉపర్ విపత్తి ఆయే యే గణేష్ కృతాయ మే మేనే బహుత్ హీ గలత్ కార్య కియా హై మే ఇత్నే గలత్ ఇత్నా అపరాధ్ అఘ కా మతలబ్ హోతా హై పాప్ ఔర్ నిష్కృతాయ మతలబ్ ఉస్సే ముక్త హోనే కే లియే ఇస్ అపరాధ్ సే ముక్త హోనే కా ఏక్ హీ తరీకా హై కి కిసీ తరహ సే మేరే ఉపర్ బహుత్ బడీ విపత్తి ఆనీ చాహియే మేరే సాథ్ బహుత్ బురా హోనా చాహియే వాస్తవ్ మే మే అభీ ఢండ్ కే లాయక్ హూ ముజే అభీ విపత్తి మిల్నీ చాహియే జ్యాదా సమయ నహీ లగ్నా చాహియే యథాన కురియాం పునరేవ మత్తా ముజ్ పర్ ఇత్నా బడా కష్ట ఆనా చాహియే కి మే జిందగీ మే కభీ యథాన కురియా నా కర్ సకూ పునరేవ మత్తా ఇస్ తరహ కా అపరాధ మే జీవన్ మే కభీ నా కర్ సకూ మేరే జీవన్ మే భయంకర్ విపత్తి ఆయే భగవాన్ ముజే ఇత్నా కష్ట జే ఇత్నా బడా దండ్ దే తాకి మే దోబారా కభీ ఏసా అపరాధ అప్నే జీవన్ మే కభీ భీ ఏసే అపరాధ కే విషయ మే సోచ్ భీ నా సకూ మే అప్నే ఇస్ పాప్ సే ముక్తి ప్రాప్త కర్నే కా కేవల్ ఏక్ హీ ఉపాయ హై కి ముజే ఇస్కీ సజా మిల్నీ చాహియే ముజే ఇస్ పాప్ కా దండ్ మిల్నా చాహియే నిశ్చిత్ రూప్ సే మేనే బహుత్ గలత్ కార్య కియా ధ్రువం తతో మే కృత దేవ హై ఇత్నా బడా అపరాధ్ కియా మేనే ఏక్ భక్త్ ఏక్ సంత్ కే ఉపర్ మేనే ఇత్నా బడా అత్యాచార్ కియా దురత్యయం వ్యసనం నాతి దీర్ఘాత్ అబ్ విపత్తి ముజ్సే బిల్కుల్ దూర్ నహీ హై ఔర్ మే చాహతా భీ యహీ హూ తదస్తు కామం మేరీ హృదయ సే ఇచ్ఛా హై కి కుచ్ ఇత్నా खराब मेरे साथ हो, इतना मेरे को कोई भयंकर विपत्ति आए, इतना मुझे बड़ा दंड मिले जिससे मैं इस अपराध से मुक्त हो सकूं, इस अपराध से मुक्ति का और कोई तरीका नहीं दिखता, मुझे इतना अपराध का दंड मिलना चाहिए कि मैं जीवन में कभी भी यथा न कुरिया पुनरेवमत्था, जीवन में कभी भी ऐसा अपराध करने के विषय में सोचूं भी नहीं। अनुवाद। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे निश्चित रूप से आशंका है कि निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। गौ ब्राह्मण हिताय छे। महाराज परीक्षित को यह सब ज्ञात था, अतएव उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह से अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट भविष्य में किसी घोर संकट की आकांक्षा कर रहे थे। अतएव वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार को कुछ ना हो। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जब हम कोई अपराध करते हैं तो शीघ्र यदि हमें उसका दंड नहीं मिल जाता तो फिर आगे भविष्य में हमारे पूरे परिवार को उसका दंड भुगतना पड़ता है। जिस तरह से एक भक्त होता है, वो यदि भक्ति करता है तो उसके पूरे परिवार को उसका उसकी भक्ति का लाभ प्राप्त होता है, उसी तरह से यदि हमसे कोई अपराध हो जाता है तो पूरे परिवार को उसका उत्तरदायी होना पड़ता है। इसीलिए महाराजा परीक्षित चाह रहे थे कि अभी का अभी मुझे उसका दंड मिलना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य का दुर्व्यवहार पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए, वे स्वयं कष्ट भोग कर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका प्रतिकार हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त ऐसा ही सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के लाभों का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्ति से अपने असुर पिता को बचाया। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है कि यदि हमारे परिवार में संतान भक्त हो जाती है तो पूरे परिवार का कल्याण होता है। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को सदैव से यह संस्कार देने चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे संतान जो है वो भक्त बने, जिससे हमारा पूरा कुल जो है वो उसकी भक्ति का लाभ प्राप्त करे। तो महाराज परीक्षित भगवान के भक्त थे, बेशक उनके कारण सारे परिवार को बहुत लाभ मिले, लेकिन भक्त की हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट नहीं मिलना चाहिए। इसलिए महाराज परीक्षित सोच रहे हैं कि मुझे तदस्तु कामम ये गणेश कृताय, मैंने जो अपराध किया है उसका सिर्फ मुझे अभी का भी दंड मिलना चाहिए, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। तो वो चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर मेरे परिवार वालों को ही इसका दंड भुगतना पड़े। आगे राजा परीक्षित श्लोक नंबर 3 में कहते हैं, अद्यैव राजम बलमृद्धकोशम प्रकोपित ब्रह्मकुलानलोमि दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत पापीयसीदि द्विजदेव गोप्या। अत्यैव राज्यं बलमित्थकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुला नलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसीदि द्विजदेवकोप्या अत्यैव राज्यं बलमित्थकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसीदि द्विजदेवकोप्या शब्दार्थ अध्यैव राज्यम आज ही अभी का भी ऐसा होना चाहिए। मैंने जो अपराध किया है उसके बदले में आज ही अध्यैव निश्चित ही राज्यम बलम मृद्ध कोशम। राज्यम का मतलब होता है मेरा राज्य, बलम मृद्ध यानी मेरा बल मेरा धन, कोशम यानी मेरा खजाना, प्रकोपितम प्रज्वलित ब्रह्म कुल द्वारा अनल यानी अग्नि में धातु वो मुझे जला दे, मेरा राज मेरा धन मेरा खजाना मेरा सब कुछ वो आज ही आज ब्राह्मणों कुल की प्रकोप की अग्नि में उनकी जो क्रोध की ज्वाला में मेरा आज ही आज सब कुछ नष्ट हो जाए। अनल मतलब उनकी प्रकोप की जो अग्नि होगी ना, अभी मैं चाहता हूँ कि वो सारे ब्राह्मण मुझ मिलकर मेरे ऊपर इतना क्रोध करें कि उनकी क्रोध की अग्नि में मेरा धन मेरा वैभव मेरा माल मेरा खजाना मेरा राज्य सब कुछ जलकर नष्ट हो जाए, मैं कंगाल हो जाऊं, मुझ मेरे पास कुछ ना रहे, सब अच्छा होगा। वे कहते हैं दहत्व भद्रस्य अभद्रस्य यानी पुनर्न में भूत अभद्र पुनर्ना में भूत। अभद्र मतलब ऐसा गलत कार्य ऐसा अशुभ कार्य पुनर दोबारा ना में भूत मेरे द्वारा कभी भी ऐसा ना हो, मेरे पास कुछ रहे ही नहीं जिसकी बल पर मैं कुछ कर सकूं, कभी किसी के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर सकूं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूं आज के आज ब्राह्मण कुल मिलकर मेरा सब कुछ भस्म कर दे पापी ऐसी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इसलिए दी यानी बुद्धि आगे द्विज देव गोभ्य द्विज यानी ब्राह्मण देव यानी भगवान या देवता और गोभ्य यानी गायों के प्रति। यहाँ पर ये तीन चीज तीन के नाम बताए गए हैं कि संसार में यदि हम दूसरे किसी के साथ कोई अपराध करते हैं, किसी का कुछ हानि हो जाती है हमारे कारण, किसी को कोई दुख, वैसे तो भक्त का यही इच्छा होनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी चींटी को भी दुख ना मिले, लेकिन अगर किसी को मिल जाता है जाने अनजाने अकस्मात हमसे कोई अपराध हो जाता है तो भी इन तीन के प्रति कभी भी दोष भाव नहीं होना चाहिए। इन तीन के प्रति कभी भी हमें कोई इनको हमारे द्वारा कभी भी दुख नहीं मिलना चाहिए, इनकी सदैव संकट से रक्षा होनी चाहिए, उनको कभी भी उनके दुख का कारण नहीं, उनकी सेवा करनी चाहिए। बल्कि कौन कौन द्विज देव गोभ्य द्विज यानी जो ब्राह्मण होते हैं वो देव यानी देवता, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं तो उनके उनका कभी भी हमें दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, उन्हें संरक्षण भगवान स्वयं गौ ब्राह्मण हिताय से गायों के और ब्राह्मणों के हित करने वाले हैं और उनको भगवान कभी माफ नहीं करते जो गायों या ब्राह्मणों के कष्ट का कारण बनते हैं। और दूसरे देव, देव का मतलब होता है देवतागण जिनको के भगवान ने बहुत सारे कार्य सौंपे हैं, भगवान ने कार्य सौंपे हैं, बहुत बड़ी मैनेजमेंट संभालते हैं, तो इन सब का सम्मान करना चाहिए। जैसे गौ है, समाज के लिए सबसे सुंदर वस्तु गौ दूध है, तो ये बहुत आवश्यक है। यज्ञ जो होता है, देवता भी जो होते हैं ना यज्ञ के लिए, उन्हें भी गौ दूध की आवश्यकता होती है। संसार में ब्राह्मण को यदि बचाना है तो उसके लिए गौ की रक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए गौ की रक्षा होनी चाहिए, ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए, देवताओं का सम्मान होना चाहिए। भगवान उनको कभी माफ नहीं करते जो गौ ब्राह्मण और देवों को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाते हैं। अनुवाद देखिए, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण के को क्रोधाग्नि से तुरंत ही भस्म हो जाए, जिनसे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मार्गदर्शित ना हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बता रहे कि प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा पर आधारित है। आज यदि वास्तव में मानव सभ्यता का ह्रास हो रहा है तो उसका कारण यही है कि गौ ब्राह्मण का कोई भी सम्मान नहीं हो रहा है, ईश्वर चेतना का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। तो इसीलिए भौतिक दृष्टि से भले ही हम कितनी ही प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा जो मानव सभ्यता है वो मानव सभ्यता नीचे और नीचे होती जा रही है, उसमें कोई उन्नति नहीं हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को उपर्युक्त सिद्धांतों के लिए पूरी तरह से उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाएंगे। जो कार्य यहाँ पर हम करते हैं उसमें ब्राह्मण और गौ का सहयोग लेना चाहिए, वरना तो फिर अगर हम इनको कोई सम्मान नहीं मिलेगा उनको, तो फिर क्या होगा। यहाँ श्री प्रभुपाद जी के तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाएंगे, वही हमारे दुर्गति के कारण बन जाएंगे। गौ रक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है। ये तीनों परस्पर है, गौ रक्षा होगी तो ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्राप्त होगा, यानी ब्राह्मण संस्कृति जो है वो गौ दुग्ध पर डिपेंड करती है, और जब ब्राह्मण संस्कृति को विकसित होगी तो तभी से ईश्वर चेतना आगे बढ़ेगी। यहाँ पर जैसे बताया, द्विज देव घोभ्या, अगर ब्राह्मण ही नहीं होंगे तो शिक्षा कौन देगा कि हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, देवता क्या है, भगवान क्या है, किस तरह से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से तो अगर गौ ब्राह्मण और ईश्वर चेतना का विकास नहीं हुआ तो मनुष्य जानवरों की तरह बस इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता रहेगा। फिर चाहे भौतिक दृष्टि से कितना ही विकास हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि हमारा पतन हो रहा है, क्योंकि मनुष्य का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो सिर्फ जानवरों की तरह इंद्रिय तृप्ति पर डिपेंड होकर रह जाएगा। इसलिए आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है जब इनका विकास होता है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है, और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपर्युक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा को भूख तथा प्यास के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना करनी पड़ी। महाराज परीक्षित ने इस अकस्मात घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, धन, उनका बल तथा उनका कोष यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता है तो जलकर भस्म होना चाहिए। यहाँ से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम यदि हमारे पास जो कुछ भी है, यदि उससे गौ ब्राह्मण की रक्षा नहीं हो रही है तो फिर वो किसी कार्य का नहीं है, जलकर भस्म हो जाना चाहिए। हमें किसी तरह से गौ ब्राह्मण और ईश्वर चेतना का विकास करने के लिए कार्य करना है, यही हमारे धन वैभव, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जहाँ कहीं संपत्ति तथा शक्ति का दुरुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गौ रक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता है, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं, तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्म शुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को, आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर चेतना को और पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गौ रक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर तीन चीजों को प्रश्रय मिलना चाहिए। प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, हमें यदि आत्मशुद्धि करनी है, आत्मा जो कि मलिन हो गई है भौतिक इच्छाओं के कारण, उसको शुद्धि करने के लिए ब्राह्मण संस्कृति को आश्रय मिलना चाहिए। ब्राह्मण होंगे तभी तो हमें जो है वो ज्ञान प्राप्त होगा शास्त्रों का। आत्म साक्षात्कार के लिए ईश्वर चेतना का को आश्रय मिलना चाहिए, ताकि हमें पता चले भगवान कौन है, देवता कौन है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। तो ईश्वर चेतना के लिए हमें ईश्वर चेतना को आश्रय मिलना चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए, और पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए गौ दूध का होना आवश्यक है। इसलिए महाराज परीक्षित बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ब्राह्मण को मेरे द्वारा कष्ट मिला है। इस तरह से ब्राह्मण यदि क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो ईश्वर चेतना भी उन्नत नहीं हो पाती है। तो मेरे द्वारा समझो इन सबका ही हिरास हुआ है। तो अब मैं, मेरा जीना ही विफल है। अभी मैं, मुझे अधिकार नहीं है जीने का, बल रखने का, राज्य रखने का। इससे बेहतर है मेरा सब कुछ जलकर भस्म हो जाए, ताकि कोई भी, मैं या कोई भी आगे राजा, ऐसा कोई अपराध ना करे जिसके कारण गौ, ब्राह्मण और ईश्वर चेतना को हिरास हो। ये महाराजा परीक्षित का की महानता है कि वो इस तरह के विचार रख रहे हैं, इस तरह का पश्चाताप कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि सूत गोस्वामी हमें किस तरह से सुखदेव गोस्वामी के दर्शन कराते हैं। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को सदैव अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।